గౌరచంద్రాయ అరాధికాయ తదాలే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తదుభక్తాయ కాళీయ దమన్ కే బాద్ మే కృష్ణ ఎక్ దిన్ సఖావో కే సాథ్ ఖేల్ రహే థే. इतने में उनका भेजा हुआ प्रलंबासुर नामक एक राक्षस आया, महाबलवान. वो भी सखा बन करके उनके दल में मिल गया. कृष्ण और बलदेव जी समझ गए. कृष्ण ने दो दलों में बांट दिया अपने को. एक तरफ में लीडर हुए बलदेव जी और एक तरफ में स्वयं हुए. और इस प्रलंबासुर को कृष्ण ने अपनी ओर रख दिया. बाई चांस कृष्ण का दल हार गया. उस समय कृष्ण श्रीराम को अपने कंधे पर ले लिया और चलने लगे और परम्बासुर बलदेव जी को वहन करने लगा. बलदेव जी समझ गए कि ये मुझे मारना चाहता है. उस राक्षस ने ऐसा सोचा, कृष्ण को मारना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए बलदेव को ही पहले मारूं, इसके बाद में कृष्ण को मारूंगा. इसे लेकर के घनी जंगल में चलने लगा और पृथ्वी तो धरणीधर है, अपना सारा भार उसके ऊपर में ऐसा दबा दिया कि चलने में असमर्थ हो गया. तब उन्होंने विकराल रूप धारण किया और उनको ले चलने की चेष्टा की. बलदेव प्रभु जी ने अपने मुष्टिकाल हाथ से उसका सिर विचूर्ण कर दिया. तात्पर्य ये है, भक्तों के हृदय में कपटता हो सकती है, साधकों के हृदय में तरह तरह की कपटताएं होती हैं. भगवान का भजन करता है या करती है और उसमें अपना स्वार्थ आ जाता है. हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, हम धनी हो जाएं, मानी हो जाएं, ऐसी बहुत तरह की कामनाएं होती है, हमें मोक्ष हो जाए. गुरु बलदेव जी गुरु तत्व हैं, वे इस कपटता को दूर करते हैं. इस लीला का यही तात्पर्य है. इतने में कुछ दिनों के बाद में शरद ऋतु आई. उस समय बेली चमेली जूई कदम्ब के फूल चारों तरफ में फूल गए. भारे ऊपर पागल होकर के मड़राने लगे और गुंजार करने लगे. सब वृक्षों में फल थे, लताएं खिल रही थी, कोयल कुहू कुहू कर रही, मयूर नृत्य कर रहे थे. कृष्ण अपने सखाओं को बलदेव जी के साथ गोचारण करने के लिए एक वन से दूसरे वन में जाते हुए बड़ी सुंदर आरोह और अवरोह पूर्वक बंसी बजाई. इसे सुनकर के गोपियों का मन अपने हृदय से निकल गया, वो मुग्ध हो गई. उन्हें कृष्ण की चाल, उनकी हंसी, उनकी ठठोली भरी हुई बातें, उनकी दिलग्गी हंसी दिलग्गी इत्यादि को स्मरण करके वो विवश हो गई. इसका वर्णन करने चाहती थी सखियां अपने घरों में सुन करके. इस बंसी को दूसरे किसी ने नहीं सुना, मात्र स्थानीय गोपियों ने नहीं सुना, केवल गोपियों नहीं कृष्ण की जो प्रेसिया उन्होंने सुना. अभी पहली बार ये किशोरी हुई है और कृष्ण के साथ में इनका संबंध अभी पहली बार में भागवत में दिखलाया गया. इसके पहले गोपियों का कोई वर्णन नहीं है, सखाओं के साथ में माता इत्यादि के साथ में वर्णन है. उस समय कृष्ण का रूप कैसा था, वराह पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्णिकारम विप्रत बास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप बिंदई बिंदारण्यम शपदरमणम पापिशत. ओ गले में वैजयंती माला, पहराव में पहनने में पीताम्बर वस्त्र बिजली की तरह चमक रहा, वनमाला पैरों तक लटकी. कृष्ण का वर्ण श्याम था, श्याम रंग के थे, उस पर बिजली की भांति उनका पीताम्बर फहरा रहा है, गले में तुलसी से युक्त वनमाला पैरों तक लंबी झूली हुई है, भौरे उस पर गुंजार कर रहे हैं, अद्भुत उनका रूप लावण्य। सखाओं के साथ में चल रहे सखाए सखाओं उनकी गुणानुवाद का कीर्तन कर रहे हैं और वो नंगे पांव पृथ्वी पर चल रहे हैं। गोपिया एकदम विभोर हो गई, कहने लगी अक्षमतां फलमिदं न परम विदाम। ओ आंखों का फल एकमात्र यही है, इससे अधिक कोई नहीं हो सकता। कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ में करोड़ों करोड़ों गायों को लेकर एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हैं और बंसी बजाते हुए जब चलते हैं बलदेव जी के साथ में और ब्रजेंद्र सुतयो, ब्रजेंद्र सुतयो माने बलदेव और कृष्ण, और इसका दूसरा अर्थ है सुतश्च सुतयो, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण और एक है ब्रजेंद्र विश्वभानु जी, उनकी लड़की कन्या, दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति कटाक्ष कर रहे हैं उपास, उनका दर्शन करना ही हमारे जीवन का एकमात्र फल है। कोई कहती है सखी से, सखी हम तो नहीं जा सकती, हम तो विवश हैं, हमारी सास ननद और सब हम पर बिगड़ जाएंगी। कोई बात नहीं, चल करके एक बार तो देखो, लोक लज्जा सब कुछ तुम भूल जाएगी अपने आप, और उनको दर्शन करने का तुम्हें सौभाग्य हो जाएगा। इस तरह से गोपियां कह रही है कि ओहो वृंदावन में, वृंदावन धन्य है, जहां पर कि कृष्ण बंसी वादन करते हैं, मयूर नृत्य करते हैं उनकी बंसी के ध्वनि पर, इसी गोवर्धन की तलहटी में, और वे कृष्ण की ताल पर नाच कर अपना एक मयूर पंख छोड़ देते हैं और कृष्ण उसको ग्रहण करके अपने शिर में लगा लेते हैं। मानो मयूर कृष्ण की बंसी के तान पर न्यौछावर करके अपने को पुरस्कार स्वरूप उनको एक अपना पुच्छ दिया और कृष्ण उसको अपने शिर पर धारण कर रहे हैं। ओहो ये वृंदावन की हिरणिया धन्य है, वो कृष्ण की बंसी की का स्पर्श सुनकर और कृष्ण का सुंदर मुखार बिंद दर्शन कर अघाती नहीं, वो प्रणय की भिक्षा मांगते हुए कृष्ण के ऊपर आकर निकट और उनके मुख को निहारने लगती हैं, और देखो उनके पति भी कृष्ण सार उनके पीछे पीछे आते हैं, चलो कोई डर की बात नहीं है, और हमें ऐसी दुर्भागा है कि हम कृष्ण से मिल नहीं सकते, हमारे पति यदि सुन ले तो घर से बाहर कर दे, मारेंगे पीटेंगे, किंतु इनका सौभाग्य तो देखो, ओहो ये गाय धन्य है ब्रज की, जब कृष्ण की मधुर बंसी की तान सुनती हैं, प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं और कानों को शब्द की तरफ में मानो दोना बना करके उनके स्वर को कान से पी रही हैं, मुख में ग्रास है किंतु न तो बाहर निकाल रही हैं न उसे निकल पाती हैं, वहीं के वहीं एकदम जड़वत होकर के बस सुन रही हैं, और उनको बछड़ों की तो बात देखो, गायों का स्तन पी रहे थे और दूध उनके गले तक गया, किंतु जो ही बंसी की तान सुनी बस दूध न नीचे गया न ऊपर गया, बस वहीं का वहीं रह गया, आंखों से आंसू प्रेम के टपकने लगे। वृंदावन के ये वृक्ष क्या है, पक्षी, अरे ये तो मुनि हैं और कोई नहीं, बड़े बड़े मुनि लोग हैं, ये पेड़ों की डाल पर बैठे हुए हैं और कृष्ण की मधुर बंसी की तान सुनकर के तन्मय हो गए हैं, जैसे कोई मुनि समाधि में जाता है ऐसे ये समाधिस्थ हो गए हैं। इनको शरीर की सूझबूझ नहीं, ये वृक्षों के किस डाल पर बैठे हैं, वेद नहीं भागवत रूपी जो वेद की कल्पत रूपी जो डाल है उस भागवत की डाल पर बैठ करके मानो ये सुन रहे हो। बहुत ये जमुना जी धन्य है, ये जमुना जी जब कृष्ण की बंसी की तान सुनती हैं तो उनमें उताल तरंगे आ जाती हैं और कृष्ण का आलिंगन करने के लिए उनका पानी उनके छाती तक बढ़ जाता है, किंतु कृष्ण उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको लज्जा आती है और वो फिर कमल का उपहार लेकर अपने हाथों में लहरियों में और कृष्ण के चरणों में दे रही है। हाँ, हम ऐसी दुर्भागी हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि देने की तो बात क्या, हम उनके निकट भी कहीं जाएं कभी उनकी चर्चा भी करें तो हमारी सार सार सुनिए और सभी हमारी निंदा करेंगे। ओ देखो तो आकाश में मेघ बादल क्या कर रहे हैं, कृष्ण जब जाते हैं दोपहरिया में जबकि गर्मी पड़ती है तो अपने अत्यंत सुशीतल बादलों से उनके ऊपर में छत्ते की भांति चल लग जाते हैं और उनसे खूब कोमल कोमल ठंडी ठंडी बूंदे टपकती हैं कृष्ण के ऊपर उनके शाखाओं के ऊपर में गायन को, ये धन्य है। ओह वृंदावन की ये पुलिन कन्याएं गोवर्धन की, उस समय में पुलिंदी वो बड़ी धन्य है, हम ऐसी धन्य नहीं है। जब कृष्ण गोपियों के हृदय का कुमकुम अपने पैरों में लगाकर जब सवेरे दूब की घास पर चलते हैं तो उस घास पर जो बूंदे रहती हैं ओस की उसके उनके चरण की कुमकुम लग जाती है और उसको देख करके कामांध हो जाती हैं और उसे पोंछ पोंछ करके अपने सारे शरीर में लगा करके अपने काम तो आपको दूर कर देती है। ओहो किंतु ये कुमकुम है कहाँ का, उसी गोपी का राधा जी के बस्तक्षल का है, किंतु वो अपने को धन्य नहीं मान करके उस पुलिंदी को धन्य मान। इस प्रकार से गोपियां तन्मय होकर उनका गुणगान करने लगी। इसके बाद में और भी लीलाएं हैं, अभी समाप्त करना है उनको, अभी हमारे श्रीमान तीर्थ महाराज जी इसके बाद की लीलाओं का वर्णन करें।